السلام علیکم مادری بہن.
وعلیکم السلام. لیکن ہم نے تو تربوز نہیں منگوایا ہے.
آج کا مال بہت میٹھا تھا, سوچا تھا دے کر آ جاؤں.
آپ نے کیوں تکلیف کی آنے کی؟ بچے نہیں آئے گا آج؟
نہیں, وہ آج گھر پر ہیں.
گھر میں کیوں چھوڑ کے آئے ہیں؟ خدا خیر کرے, ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟
ہاں طبیعت ان کی ٹھیک ہے. آج وہ مارکیٹ گئے اپنی ماں کے ساتھ اسکول کی کاپیاں کتابیں لینے. اتوار سے اسکول جائیں گے بچے. اچھا میں چلتا ہوں.
قاسم بھائی.
بولے باجی.
خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آپ دنیا میں بہترین باپ ہیں, اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے جو آپ نے مجھے بتائی ہے. آپ کا بہت شکریہ. ان کے پیسے کتنے ہوئے؟
زیادہ پیسے نہیں ہیں, میں نادری صاحب سے خود حساب کر لوں گا. خدا حافظ.
خدا حافظ.
اجازت چاہتا ہوں.
جس دن مجھے وہ بچے مل جائیں گے, اس کی آخری سانس, اس کے بیٹے سے ملنے کی حسرت اس کے دل میں باقی رکھوں گا. میں اسے اسے سے نہیں ملنے دوں گا.
کیا ہوا ہے قاسم بھائی؟ کچھ ہوا ہے کیا؟
نادری صاحبہ.
بولے.
اپنے بچوں کو لے کے آپ یہاں سے فوراً چلی جائیں.
میں سمجھی نہیں.
اپنے بچوں کو لے کر آپ اس گھر سے, بلکہ اس شہر سے بہت دور چلی جائیں. اگر حشمت فردوس نے آپ کے بچے چھین لیے تو ان سے کبھی بھی نہیں ملنے دے گا.
تو آپ اصل میں کون ہیں؟ سچ بتائیں. بابا جان. بابا.
تھک گئے کیا نادری؟
بس تھوڑا بوڑھا ہو گیا ہوں, اور ہماری بیٹی نے اس بوڑھے کو بہت بگایا.
نہیں بابا جان, میری غلطی تھی, معاف کیجیے گا مجھے. میں اتنا ڈر گئی تھی کہ کہیں قاسم بھائی کا وہ ساتھی ہمارے پیچھے نہ آ جائے, اسی لیے آپ کو پہلے بھیجا.
تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے بیٹا.
اچھا بھائی, اب سب کچھ ہو گیا ہے, ٹیک لگا لو, آرام سے بیٹھ جاؤ, ابھی ہمارا سفر بہت لمبا ہے.
اس کو مجھے دے دو. آ جاؤ آ جاؤ میرے پاس میرا پیارا بیٹا. سیدھے سامنے دیکھو, وہ دیکھو 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 وہ دیکھو دیکھو اوپر دیکھو.
کیا آپ جا رہے ہیں قاسم بھائی؟ اور تربوز تو ہے نہیں تو پھر کس لیے کھڑے ہو؟
لیکن ابھی تک وہ لوگ واپس گھر نہیں آئے.
اگر وہ لوگ گھر نہیں آئے تو یہ ہماری پریشانی نہیں ہے.
قاسم بھائی میری بات تو سنو. لیکن آج سے پہلے کبھی میں نے ان لوگوں کو ایک ساتھ جاتے ہوئے نہیں دیکھا. میں بول رہا ہوں معاملہ مشکوک ہے.
بھائی اپنی شکل دکھا دکھا کے تم نے مار دیا ہے. مشکوک ہے مشکوک ہے مشکوک ہے. بھائی وہ لوگ اپنے کسی رشتے دار کے گھر, اپنے کسی جاننے والے کے گھر گئے ہوں گے. شاید وہ لوگ پوری رات نہ آئے تو میں رکوں گا.
قاسم بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مل کر گلی کے کونے تک گئے اور پھر اچانک سے غائب ہو گئے؟ دیکھو اب مغرب ہونے والی ہے, اب ہمارا گھر جانا فضول ہے.
فضول ہے یا نہیں ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. تمہیں رکنا ہے تو رکو, صبح تک میں جا رہا ہوں.
اچھا بھائی رکو میں بھی آ رہا ہوں. رک جاؤ بھائی.
نادان انسان میری طرح کا حکمت خدا کو دیکھ رہا ہے کہ اس خدا کی حکمت کا معاملہ کیا ہے؟ میں نہیں سمجھ سکا تو نہیں سمجھ سکا. میرے چچا کے بیٹے نے میری پھپھی کی بیٹی سے شادی کی تھی. ماشاءاللہ ان کے دو بچے بھی ہو گئے تھے. اگر آج وہ بچے زندہ ہوتے, خدا آپ کے بچوں کو نظر بد سے بچائے کہ وہ دونوں بچے آپ کے بچوں کی عمر کے برابر ہوتے, یا شاید تھوڑے چھوٹے یا بڑے. اس رات جب رود بار میں زلزلہ آیا, میرے چچا کہاں تھے؟ کھیت میں. اور باقی کہاں تھے؟ رود بار والے گھر میں. سب ملبے تلے دب گئے. پھر تین دن کے بعد میری پھپھی کو ملبے سے زندہ نکالا گیا, باقی سب مر گئے. میری پھپھی پھر میرے چچا کے پاس چلی گئی. اس وقت سے اب تک ایک بات بھی نہیں کر سکتی ہیں, ایک حرف بھی. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس تین دن کے خوف کی وجہ سے وہ بالکل نہیں بول پاتی. اب آپ بتائیں ان دونوں کا زندہ بچ جانے میں ایسی کون سی خاص حکمت پوشیدہ ہے جو تقریباً 150 سال ان کی عمریں ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟
ان کے بیوی بچے اور شوہر کا چلے جانا یہ کیا ہے؟
میں نہیں سمجھ سکا۔
کچھ باتیں ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔
میرے سبحان چاچا، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
میرے بھائی، ہیڈ لائٹ تو بند کریں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ کون ہو۔
آپ خود اتنے نورانی ہیں اس گاڑی کی لائٹ سے زیادہ۔ آپ نے اپنا نور کم کیا تو میں بھی بند کر دوں گا۔
تم ہو بدتمیز حسن۔ ارے کیا ہوا، آج کیسے اپنے بوڑھے چچا اور پھوپھی کی یاد آ گئی؟ ہاں، تم تو یہ سوچ کر آئے ہو گے کہ یہ دونوں بوڑھے مر کھپ گئے ہوں گے، پھر تم بولو گے کہ غلطی ہو گئی۔
ارے نہیں، قربان جاؤں آپ پر۔
اچھا کیا تم نے، اندر چلو، آؤ ان کو بھی بلا لو۔
ہم چار ہیں۔
میری بھی چار آنکھیں ہیں، ہر ایک پر ایک سی نظر رکھوں گا۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ ارے میرے لیے میری عمر کا ساتھی لائے ہو حسن۔
آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟
میں بالکل ٹھیک ہوں، بس پھر تو اچھی بیٹھک لگے گی۔
السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام مجید، اچھے وقت پر آئے ہو، دروازہ کھولو، میرے کچھ مہمان آئے ہیں اور میری ڈیوٹی پر آ جاؤ۔
اچھا بہتر۔
ارے چلے، تمہاری پھوپھی کے بنائے ہوئے قورمے میں سے منہ میں پانی آ رہا ہے۔
ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اب میں کھانا نہ کھاؤں۔
آپ بیٹھیے۔ نہیں، آپ بیٹھیے جی۔ اچھا، بہت شکریہ،
بیٹھیے۔
اچھا،
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، خوش آمدید بیٹے۔
سبحان چاچا، آپ کا تو اپنا ہی گودام تھا، تو پھر آپ یہاں؟
ارے نادان، یہ میرا ہی گودام ہے۔ مگر جب بھی گھبراتا ہوں تو اس دروازے پر آ جاتا ہوں۔ اس طرح مجید بھی کچھ دیر اپنی بیوی بچوں کے پاس جا کر کھانا کھا لیتا ہے، اور میں بھی جو چار گاڑیاں یہاں پر آتی جاتی ہیں میں ان کے ساتھ دعا سلام کر لیتا ہوں۔ میرے دل کی بے چینی دور کرنے کے لیے بس یہی ایک کام ہے۔
خاک ہونے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے سبحان چچا۔
تم خاک ہو، تمہاری خاک سے میں بھی خاک ہوا، تمہاری خاک سے جب میں خاک ہوا میں پاک ہوا۔
جی
تمہارے قربان جاؤں، چلو چچا کی جان۔ عزیز، عزیز صاحبہ، آئیے۔ پھوپھی جان آ جاؤ، ہمارے مہمان آئے ہیں، عزیز حسن آیا ہے۔ دو پلیٹیں دسترخوان پر زیادہ رکھنا، آئیے۔
السلام علیکم پھوپھی۔ دیکھا میں آ گیا۔
السلام علیکم۔
السلام علیکم۔
السلام علیکم۔
آپ کھڑے کیوں ہیں؟ آئیں، اندر آئیں۔
آپ کا بہت بہت شکریہ۔
آؤ میری بیٹی، آ جاؤ۔
آپ اندر جائیے، میں آپ کا سامان گاڑی سے لے کر آتا ہوں۔
آپ کو زحمت دیا حسن بھائی۔
ایسی کوئی بات نہیں، آپ اندر جائیے۔
چراغ جلا کر تم میرے انتظار میں تھے، میں کیسے زندہ ہوں، تمہیں یہ خبر کیسے ہوئی؟ چلے چلے چلے، آئیے۔
قورمہ، وہ بھی پھوپھی کے ہاتھ کا، ہمیشہ کی طرح مزیدار تھا۔ بہت بہت شکریہ پھوپھی۔
اور لو نا۔
بہت شکریہ۔
تم یہ اٹھا لو بیٹا۔
وہ میں یہ برتن کہاں رکھوں؟
यकीन नहीं आता, ऐसा भी हो सकता है? आखिर वो शख्स ऐसा कैसे कर सकता है? इन हालात में भी अपनी बहू और पोता पोतियों को परेशान किया हुआ है। अच्छा किया हसन कि तुम इन लोगों को यहाँ ले आए। यहाँ पर उसके हाथ तुम लोगों तक नहीं पहुंच सकते। मैं और अजीज मशहद जा रहे हैं ताकि ज़ियारत करें और बोझ हल्का करें। एक हफ्ते आप और आपकी बेटी
सताइश। मेरी बेटी का नाम है सताइश।
माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर आप गोदाम को संभाल लेंगे और इंशाल्लाह सताइश बेटी किचन के हालात, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे और फिर आपका नाम हमारे नाम की जगह पर लिस्ट में आ जाएगा और कंपनी की तनख्वाह आपको मिल जाएगी और ये घर रहने की जगह। तुम क्या कहते हो हसन?
जी जबरदस्त जबरदस्त।
अब क्या हुआ हाजी?
ये होने वाला नहीं है।
क्या मतलब होने वाला नहीं है?
आखिर हम किसी कंपनी में नौकरी नहीं कर सकते।
मेरे भाई वक्ती है, फिर बाद में कोई और काम किसी और जगह पर देखेंगे।
मसला सिर्फ ये नहीं है, हमारा नाम सिर्फ वहाँ नहीं रहेगा, बाद में हेड ऑफिस चला जाएगा, फिर पुलिस स्टेशन चला जाएगा, हजार जगहों पर चला जाएगा। आखिर मुल्क का एक निज़ाम है। फिरदौस हशमत के हाथ बहुत बड़े हैं, वो एक महीने में हमें तलाश कर लेगा। सुभान भाई, चाहे हजार लोग मेरे नाम के मौजूद हों मगर सताइश नादरी बहुत खास है, नहीं हो सकता वो लोग हमें ढूंढ निकालेंगे।
डरो मत हाजी, तुम्हारा नाम जो मैं चाहूंगा वो हो जाएगा।
हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि सच बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं। अपनी बेटी को किस तरह से बताऊंगा कि तुम्हारा नाम कुछ और है?
किसने कहा कि कुछ और रखो? इनका नाम सताइश है, ठीक है, आज से ये नाम हम दोबारा नहीं लेंगे। नाम हम कोई भी रख लें, असल में इनका नाम वही रहेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सिर्फ चंद दिन की बात होगी। पहले हम इनको सताइश बेटी कहते थे, लेकिन आज से हम इनको सना बानो कहेंगे। ये नाम इन पर बहुत अच्छा लग रहा है, सना बानो।
फूफी जान, बहुत तकलीफ दी, माफी चाहता हूँ।
सताइश ओ
माफ कीजिएगा।
सना बानो,
आप ख्याल रखिएगा, खुदा की अमान में रहो।
हसन भाई।
जी बेटा।
बहुत शुक्रिया आपका।
कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक बात बोलूं सताइश बेटी?
बोले।
वो अच्छी खातून है।
मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की आपसे।
खामोश है मगर पागल नहीं है, परेशान मत होना।
हसन भाई, मलूक बाजी को याद से मेरा सलाम कहिएगा।
मेरा बेटा और अजीज की बेटी और उनके दोनों बच्चे जलजले के मलबे में दब गए थे।
सारा किस्सा मुझे हसन भाई ने रास्ते में बताया।
आसमान जमीन पर गिर गया था, मुझको बर्बाद कर गया।
मैंने भी एक जवान बेटा खोया है।
हर काम में उसकी मसलहत होती है। वो जिनको दुनिया में रहने और जीने का हक था वो चले गए, मैं खामखा रह गया। जिंदगी दर्द भरा अफसाना है, रहना ना रहना अजीब इत्तेफाक है। तुम खाक में हो और मेरे सर पे खाक, तुम अंदर हो और मैं बाहर, यकीन नहीं होता। बुलबुल चला गया, उल्लू रह गया, फूल तो चमन में खिलते ही रहते हैं। बड़ी कड़वी नसीहत है।
आप इसे छोड़ दे, मैं करती हूं।
नहीं मेरी बेटी, नहीं, मेहमानों के बिस्तर लगाने का सवाब मुझसे मत छीनो। तुम अपने बच्चों को लेकर उस कमरे में चली जाओ। तुम्हारी शक्ल और आंखें बता रही है कि तुम बहुत थक चुकी हो बेटी। आज रात जितनी जल्दी सो जाओ बेहतर है।
जी अच्छा।
हाँ जाओ।
बाबा जान 10 बज रहे हैं, आपने दवाई खानी है, मैं पानी लेकर आती हूँ।
कासिम भाई ये तरबूज निकाला है।
एक और ले जाओ परिबाजी के लिए भी।
नहीं बस काफी है।
खुदा तुम्हारी हिफाजत करे कासिम, जो तुम चाहो तुम्हें मिल जाए, मेरी बाकी जिंदगी तुमको लग जाए, तुम्हारा साया मेरे और मेरे बच्चों के सर पर रहे। कितना अच्छा काम उस औरत के हक में किया तुमने कासिम।
अम्मी बाबा ने क्या किया है?
तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बाबा ने क्या किया है? बहादुरी दिखाई है, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे।
बताए ना बाबा ने क्या किया है?
कितनी बातें करते हो, तुम अपनी पढ़ाई करो।
मरियम
जी बोलिए।
अगर हशमत फिरदौस समझ गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा।
अरे ऐसी बातें मत सोचो, वो क्या करेगा? हशमत फिरदौस कौन है? नाउज़ु बिल्लाह खुदा तो नहीं है।
जब हमें वो अच्छा रोजगार दे रहा है कुछ भी कर सकता है।
नहीं वो कुछ भी नहीं कर सकता।
तुम उसको नहीं जानती, नहीं जानती तुम उसको।
अरे कासिम एक सवाल आपसे पूछूंगी, आप बुरा नहीं मानिएगा। कह रही हूँ वो आपके भाई जो अबदान से खत लिखते हैं, अगर डाकिया बीमार हो जाए तो हमें उनके खत नहीं मिलेंगे।
क्या कह रही हो मरियम, तुम क्या कह रही हो? मैं अलग बात कर रहा हूँ, तुम अलग जवाब दे रही हो। क्या सवाल कर रही हो? क्या इस बात का इससे कोई ताल्लुक है? हाँ?
तुम्हें खुदा का वास्ता है, जवाब दो बताओ।
सुनो अगर एक पोस्टमैन उनमें से बीमार हो जाए तो वो एक दूसरे पोस्टमैन को खत दे देते हैं ताकि वो खत ले आए। पोस्ट ऑफिस तो पूरा बंद नहीं कर देंगे, ये तो मालूम होना चाहिए तुम्हें।
अच्छा मैं भी यही कह रही हूँ, वो खुदा जो हमारे सरों पर है उसने हमारी रोजी का वसीला फिरदौस साहब को बनाया, मगर वो नहीं दे रहा। डाकिया नहीं आया तो क्या डाकखाना बंद हो गया? क्या हमें रोजी नहीं मिलेगी?
नहीं,
दे देगा कि कोई दूसरा पोस्टमैन दे आए।
हाँ
मरियम
जी बोलिए। अभी जाकर आपके लिए चाय ले आती हूँ।
खुदा तेरा शुक्र है।
बच्चे मेरे हैं, मेरे बच्चे मोहम्मद, नाज़गुल, नाज़गुल, मोहम्मद। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, ये तो मुझे मेरे बच्चे दे दो।
Thank you.
क्या कर रही हैं ये? ये मेरे बच्चे हैं, आपके नवासे नवासी नहीं हैं। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये मेरे बच्चे हैं, आपके नवासे नवासी नहीं।
बस करो मेरे भाई, अब ठीक है, नीचे आ जाओ। मेरे भाई अब चलें क्या? हम देर हो रही है, चलो तुम गाड़ी में बैठो, मैं बाहर निकलवाता हूँ, घुमा कर ले आओ। आने दो, आ जाओ
यार, एक मिनट रुक जाओ, गाड़ी आ रही है, जरा रास्ता दो। आ जाओ भाई, आ जाओ, घुमा के ले आओ, ले आओ ले आओ, जल्दी ले आओ, आने दो आने दो आने दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
रुको 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 रुको, हशमत साहब की गाड़ी आ रही है।
अरे देख रहा हूँ, हशमत फिरदौस की गाड़ी है, कोई टैंक थोड़ी है, बदसूरत। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जनाब अस्सलाम वालेकुम, आइए 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 जनाब आइए।
अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो?
ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।
क्या खबर है?
सब ठीक है जनाब।
ठीक होने के साथ क्या खबर है उनकी? कोई इधर उधर होना, ऊपर नीचे कोई बात?
फिरदौस साहब
सब अमनो अमान है, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं जनाब।
ठीक है। अच्छा तुम लोग अपने काम पर जाओ।
चलो चलें चुगलखोर।
क्या? असल में मैं उनको बताना चाह रहा था, काश बता देते।
बताना चाह रहे थे? हाँ, तुम ये बताते कि एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और दो बच्चों का तुमने पीछा किया था गली के कोने तक, और जब वहाँ पहुँचे तो वो कहीं गुम हो गए। चलो बैठो चलें।
हाँ हाँ चलो भाई चलो, चले
आओ बैठो, बुरी शक्ल, बैठो बैठ भी जाओ।
ऐसा करते हैं कि आज यहाँ पर बैठ जाते हैं।
बाबा वही जगह ठीक है जहाँ रोज बैठते हैं।
अब मुझे बिल्कुल होशियार रहना होगा। चलो 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 चलो, आगे आओ आगे आगे। हाँ ठीक है ठीक है, बस यहीं पर रुको।
अब तुम कहो तो इस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल तक ले जाऊं?
नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी नजरें इस घर से नहीं हटाऊंगा। तरबूज ले लो, तरबूज ले लो भाई, तुम भी तो उतर कर काम करो।
अरे भाई, इंसान को सबसे पहले सुबह सुबह दुरूद पढ़ना चाहिए, फिर किसी काम की शुरुआत करनी चाहिए। काम शुरू हुआ नहीं और तुमने सुबह सुबह शोर शुरू कर दिया।
भाई काम शुरू होता नहीं है, तुम मुझ पे बरसना शुरू हो जाते हो।
तो तेरा मुंह ही ऐसा है कि उसको देख कर चूमने को नहीं, बातें सुनाने को जी चाहता है। लोगों से अच्छी तरह पेश आया करो, वो तुम्हारे नौकर नहीं, तुम उनके नौकर हो। तरबूज ले लो, मीठा तरबूज है।
दोबारा आ गए ये लोग। हसन साहब, हसन साहब, हसन साहब।
हाँ हाँ हाँ,
वो दोबारा आ गए।
क्या हुआ? कौन कौन?
वो तरबूज बेचने वाला और उसका शागिर्द।
कौन आ गया? मुझसे क्या है, तुमसे क्या ताल्लुक है? तुमने मेरी नींद खराब कर दी।
हसन साहब, मैंने सोचा कि आपको बता दूं, आपने खुद ही कहा था कि जब तरबूज वाला आए तो मुझे बता देना।
बोला था, मगर ये वो तरबूज वाला नहीं है। और हाँ, किचन में तुम जरा कम ठक ठक करो, कल सारी रात हाईवे पर था, सोया नहीं हूँ, जोहर के बाद अपने काम पर जाऊंगा।
अब आप जब भी सोकर उठें, कल रात जो कुछ भी हुआ मुझे बताइएगा।
आप मलूक, मुझे सोने दो।
कल की सारी रात ही जागते जागते गुजर गई, अभी पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है।
किस लिए मेरी बेटी?
मैं डर गई थी बाबा जान, कल रात जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि ये मेरे बच्चों के पास बैठी उन्हें देख रही थी।
अच्छा तो फिर क्या हुआ, इसलिए तुम डर रही हो?
बाबा जान, उस औरत का रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं नहीं जानती उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपने देखा है कभी कि वो मुझे किन नजरों से देखती है बाबा जान?
किन नजरों से? मैंने नहीं देखा।
मैंने देखा है, आज तक कभी भी एक दफा भी उन्होंने मुझे प्यार से नहीं देखा है। जब भी देखा है ऐसा लगता है कि एक सवाल ही है उनकी आंखों में।
कैसे सवाल?
मुझे क्या मालूम, शायद उन्हें लगता है कि मैं ये बच्चे कहीं से अगवा करके लेकर आई हूँ। शायद वो सोच रही हैं कि ये बच्चे उनके नवासा नवासी हैं। मुझे नहीं मालूम उनकी बेटी किस तरह से मर गई, लेकिन मुझे अफसोस है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे बहुत डर लग रहा है।
तुम यहाँ से जाना चाहती हो?
कहाँ जाएंगे फिर? कल रात से यही मैं सोच रही हूँ कि इन तकलीफों से तो अच्छा है कि ये बच्चे मेरे साथ ही ना रहें। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कहीं अगर इनकी जान को कुछ खतरा हो गया तो इससे तो अच्छा है कि मैं इन्हें ले जाकर हशमत फिरदौस को दे दूं। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं बाबा जान?
हाजी उठो, चलो मैनेजर के पास छोड़ दूं। उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है।
अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम बेटी। जब तुम फारिग हो जाओ तो किचन में चली जाना, ताकि तुम्हें पता चले कि चीजें कहाँ हैं।
जी अच्छा।
बेटे मैं चलती वापस आ जाऊंगा।
आइए हाजी चलें। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ के तमाम लोगों से ज्यादा होशियार है। मैं 60 साल से इसके साथ रह रहा हूँ हाजी, इतना ज्यादा जानता हूँ कि बिल्कुल इत्मीनान से कह सकता हूँ कि अजीज अपनी जबान से यहाँ कुछ कह सके। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो गुस्सा कर रही होगी।
अरे फिर कुछ बोलती क्यों नहीं?
वो अजीज है भाई, उसको किसी से कोई सरोकार नहीं, वो अपने बचपन से ही ऐसी है। मगर मेरा ख्याल है कि वो खुद को सजा दे रही है।
सजा दे रही है किस लिए?
बहुत सी चीजों के लिए, उनमें से एक ये कि सब मर गए और वो अकेली जिंदा बच गई।
यकीन नहीं आता।
मैं यकीन करता हूं।
कासिम भाई, कासिम भाई।
क्या है, दिख नहीं रहा? मेरी आंखें बंद है, मैं सो रहा हूँ।
उस औरत का अभी तक कुछ पता ही नहीं है।
जाओ वहाँ से कार्टन उठा के ले आओ, मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है।
मैं कह रहा हूँ कि उस औरत का कुछ पता नहीं है, आज वो अपने काम पर भी नहीं गई है।
या मेरे अल्लाह, किस गुनाह की सजा मिल रही है इस आदमी को मेरे साथ लगा के? क्या जलजला आ गया यहाँ?
भाई कम से कम हमें पता होना चाहिए कि वो घर पे है भी या नहीं।
जाओ जाके खुद पूछ के आ जाओ है या नहीं।
तरबूज ले लो तरबूज, लाल लाल तरबूज, मीठा मीठा तरबूज, शहद जैसा तरबूज, ले लो तरबूज।
ये तुम्हें तुम्हारे अब्बा ने सिखाया है?
जी हाँ भाई, मेरे अब्बा ने सिखाया है। खुदा उनकी मगफरत करे, वो पुल के पास उबली हुई लोबिया बेचा करते थे। मैं शायद 4-5 साल का था, रोते पीटते उनके साथ जाया करता था, वो भी सिर्फ 2 चीज़ों के लिए। एक तो उस लाइट के लिए जो पुल पर चमकती रहती थी, और दूसरा अपने मरहूम वालिद की आवाज़ सुनने के लिए, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पता है वो अपना माल बेचते वक्त मुंह कैसे रखते थे और किस तरह से आवाज़ लगाया करते थे?
लोबिया गरम है, लोबिया गरम है, सुर्ख शहद की तरह लोबिया लेकर आया हूँ, खाकर दिल खुश हो जाएगा, लोबिया गरम है।
कासिम भाई, कासिम भाई।
जी जी बहन।
ये आपका शागिर्द क्यों बिला वजह इतना शोर मचा रहा है? इसको पता नहीं है कि इस टाइम लोग सो रहे होते हैं, घरों में मरीज
अच्छा,
भी होते हैं।
मैं भी इसे खामोश करता हूँ। समझे, तुम यही चाहते थे ना, हमें यहाँ से भगाना चाहते हो?
भाई इनके यहाँ कौन बीमार हो गया, कहीं इनके ऊपर वाले तो नहीं? हो सकता है शायद वो लोग कल डॉक्टर के यहाँ गए हो।
तुम छोड़ो उन्हें, जाओ जाके कार्टन उठाओ, जाओ यहाँ से। तुम एक तरबूज वाले हो, तरबूज बेचो जाके। सुबह से चिल्ला रहा हूँ, अपना काम खत्म करो जल्दी। यहाँ रखो।
ये देखो मैं अपनी बेटी के लिए क्या लेकर आई हूँ, ये एक गुड़िया है। चलो अब मेरी बेटी गुड़िया के साथ खेलेगी, जब तक कि मम्मी वापस नहीं आ जाती, ठीक है मेरे अच्छा बच्चा?
मम्मा
जी,
कहाँ जा रही हैं?
मैं जा रही हूँ अपनी नासगुल के लिए अच्छा सा खाना बनाने के लिए। अब मेरी नासगुल यहीं पे बैठेगी जब तक मैं वापस नहीं आती। शाबाश, अपने भाई का भी ख्याल रखना, ठीक है मेरा बेटा? चलो। खुदा मेरी मदद करना।
बात सुनो।
जी भाई।
ये लड़की कौन है?
भाई कौन?
जो अभी अंदर गई है।
मैं काम में मसरूफ हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा।
पहले तो इसे नहीं देखा।
अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा कि अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं आपके काम आ जाऊँ किसी तरह। नाज़गुल अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है और मोहम्मद को भी मैंने फीडर दे दिया है, वो भी सो रहा होगा। अगर आप कहें तो। काम करो।
अजीज बाजी, प्याज सूख हो चुकी है, आलू डालो इसमें। ठीक है।
सलीमा, सलीमा।
फरीदून साहब हैं, मुझसे कोई काम होगा।
सलीमा
जी। फरीदून साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, फरमाइए।
ये कौन लड़की है जो बोर्ची खाने में आई है?
आप तो खुद इंचार्ज हैं, ऐसी बातें मुझसे पूछ रहे हैं?
देखो, बात को घुमाओ नहीं। हाँ, ये कौन लड़की है?
सुना है अजीज साहिबा की कोई रिश्तेदार है।
अजीज साहिबा, ये वाली?
जी हाँ।
वो लड़की खुद यहाँ काम करेगी और उसके बाप को सुभान चाचा की जगह लगाया है
स्टोर में।
जी हाँ बिल्कुल, ये लड़की तो बहुत सीधी सादी है। लोग तो कहते हैं कि इसका बाप तो इससे भी ज्यादा, वो आदमी आपके बहुत काम आ सकता है।
सलीमा, क्या सचमुच सुभान चाचा यहाँ से जा रहा है?
देखिए फरीदून साहब, मैं कितने सालों से आपकी खिदमत कर रही हूँ, अगर अजीज साहिबा की जगह किसी का हक है तो वो।
तुम फिर इधर उधर की बातों में उलझ रही हो, जाओ जाओ काम करो जाओ।
ठीक है।
चलो निजात मिली सुभान चाचा से। जबी।
जी जनाब।
चलो क्या वापस नहीं जाना है?
जनाब क्या स्टोर जाना है?
नहीं भाई, चलो आके बैठो।
मुझसे कहा?
ऐसे ही खुद से कह रहा हूँ।
इसे अभी शामिल नहीं किया है, इसे बांध के ही रख लो, इसे अस्तबल लेके चले जाओ।
वो है।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सुभान चाचा? तबीयत कैसी है और घर में सब खैरियत है? सुभान चाचा, हमारे नए वर्कर का क्या नाम है?
जनाब महमूद नादरी, इनका असली काम जिल्द बनाना है।
अच्छा, स्टोर को संभालने और उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे।
स्टोर संभालने में कौन सी बड़ी बात है जनाब, ईमानदारी, सच्चाई और हिफाजत चाहिए बस, जो हमारे हाजी के पास बिल्कुल मौजूद है।
अच्छा ठीक है, मगर सुभान चाचा आपको इनके साथ रहना पड़ेगा ताकि ये काम को समझ जाए, और आप ये बात अच्छी तरह याद रखें, ऐसा मत सोचिएगा कि ये हाजी कल ही स्टोर संभालने और आप खुद मशहद के लिए रवाना हो जाएं।
अच्छा ठीक कह रहे हैं आप, आपकी इजाज़त हो तो जनाब, इनकी बेटी बावर्ची खाने में अजीज साहिबा के काम को देखेंगी, अजीज उसे सब समझा देगी जनाब।
इनकी साहबजादी खाना वगैरह बनाना जानती हैं? क्या वो ये सारी जिम्मेदारियाँ सही से संभाल सकेंगी?
ये तो अजीज बता सकती हैं जनाब, अगर अजीज उनको काम समझा देंगी तो वो संभाल लेंगी।
इकबाली।
हाँ, अस्सलाम वालेकुम।
यहाँ आओ। वालेकुम अस्सलाम, यहाँ आओ, जल्दी आओ।
हाँ फरीदुन, खैरियत तो है?
सुभान जा रहा है।
क्या?
सुभान यहाँ से जा रहा है।
नहीं।
हाँ।
तुम्हें कहाँ से मालूम हुआ?
वो किसी को अपनी जगह स्टोर में लाया है और उसकी बेटी को बावर्ची खाने में लाया है।
बावर्ची है वो लड़की?
नहीं भाई, मुझे लगता है इस काम में अभी दाखिल हुए हैं। इकबाली, वो शख्स बिल्कुल बेवकूफ लगता है, हमारे काम आ सकता है, और देखो उसकी लड़की भी बावर्ची खाने में है, जो हम देंगे वो ले लेगी। सलीमा और सरवर हमारी इस काम में मदद करेंगी।
बस फिर तुम चाहते हो वो रहे इस वजह से कि काम आसान हो जाएगा?
इकबाली तुम्हारा दिमाग कहाँ है, तुम अभी नहीं समझ सके हो। उसकी लड़की बावर्ची खाने चली जाएगी, उसका बाप कहाँ जाएगा, स्टोर चला जाएगा, किसकी जगह पर? सुभान की। सुभान का क्या होगा? वो अपनी शक्ल कहीं गुम कर लेगा, बचा कौन? फरीदून। मेरी किस्मत चमक जाएगी और स्टोर कुवैत।
बावर्ची खाने में भी रौनक लग जाएगी
भाई। उस बूढ़ी औरत को भी देख देख कर हम थक चुके हैं।
फरीदून, फरीदून
जाओ अपना काम करो। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर, कैसे हैं आप? सुभान।
वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब, सुभान चाचा की जगह आए हैं और ये कुछ दिन के लिए स्टोर संभालेंगे, और सुभान चाचा के चले जाने के बाद हमारा काम हाजी साहब के साथ रहेगा।
जी अच्छा जनाब, आपसे मिलकर खुशी हुई।
और हाँ, इनकी बेटी भी खाना अच्छा बना लेती है, अगर उनमें ऐसी सलाहियत मौजूद हुई तो बावर्ची खाने में अजीज बाजी की जगह उनको दे देंगे।
मौजूद है जनाब, मौजूद है।
क्या मौजूद है? क्या तुम्हें मालूम है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ?
जी हाँ जनाब, उन्हीं मोहतरमा की बात कर रहे हैं ना, जो बावर्ची खाने में नहीं आई हैं।
हाँ बिल्कुल, मगर हमें ये देखना होगा कि उनसे ये सब काम हो सकेगा या नहीं।
वो संभाल लेंगी जनाब, वो संभाल लेंगी।
फरीदून साहब, पहले उनका खाना पकाना देख लेते हैं, उनका काम देख लेते हैं, जिम्मेदारी देख लेते हैं, फिर सोचेंगे उनके बारे में।
हम उनके काम को देख चुके हैं, काम अच्छा कर रही हैं।
मेरे भाई, तुमने उन्हें काम करते हुए देखा तक नहीं और फिर भी बोले जा रहे हो।
जो आपकी मर्जी हो, जैसे मुझे कहते हैं फरीदून।
मेरा 30 साल का तजर्बा है जनाब, एक चावल देखकर पहचान लेता हूँ कि देख कच्ची है या पक्की।
बावर्ची अपने खानों से पहचाना जाता है जनाब, कि काम कर सकता है या नहीं, उसके देख पकड़ते ही मालूम हो जाता है जनाब। जब खाना पकाने लगता है, देख खोलता है तो खाने की खुशबू।
फरीदून साहब, आपका सारा तजुर्बा एक तरफ अच्छा होगा कि कुछ दिन वो यहाँ काम करें, फिर हम फैसला करेंगे।
जी अच्छा जनाब,
चलिए अब हम स्टोर की तरफ चलते हैं, वहां देखते हैं।
आइए
आइए। मैं आपसे कहना चाहता था कि स्टोर
हम तो कर चुके हैं इंजीनियर साहब, अपना फैसला कर चुके हैं।
सब हो गया। इनमें से हर एक की 8 बूटियां बनेंगी कल के खाने के लिए। फिर ये आप मुझसे आज क्यों कटवा रही हैं? ये देसी मुर्गी है, देर से गलती है, आज इसको चढ़ाएंगे तो कल तक गल जाएगी। सर्वर बाजी, सर्वर बाजी, यहाँ आके इसको जल्दी से धो लो। मेरा तमाम काम खत्म हो गया है, कुछ और काम है क्या? अजीज पुप्पो कहाँ गई?
मुझे लगता है घर गई होंगी।
घर चली गई? क्या घर चली गई?
सोच रहा हूँ सुभान भाई, ये काम मुझे मुश्किल नहीं लग रहा है। हम भी कोई इतने थक नहीं गए कि सिर पीछे हट जाए।
इंशाल्लाह सब समझ जाओगे।
इंशाल्लाह।
हाँ उसे ले आए भाई, उसे ले आए, एक महीने और वो भी इस मौसम में।
सतीश
बाबा जान, हम लोग यहां से चले जाएंगे अब। जा रहे हैं सुबान चाचा।
कहाँ जा रही हो मेरी बच्ची?
मैं तेहरान चली जाऊंगी और बच्चों को उनके दादा को दे दूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि मुझ में वो सलाहियत नहीं है कि जिस तरह से ताहिर चाहते थे मैं उनके बच्चों को पालूं। फिर अगर कभी उन्होंने मुझे मेरे बच्चों से मिलने दिया तो मैं जाके मिल लूंगी उनसे, और अगर नहीं भी मिलने दिया तो कभी नहीं मिलूंगी मैं अपने बच्चों से। लेकिन कम अज कम मेरे बच्चे यहाँ पर। बाबा जान आप चले यहाँ से।
तुम्हें देखते ही मैं समझ गई थी, बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह, एकदम जबान दराज हो हमारी ही तरह, लेकिन जबान बहुत तेज है।